नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है और आने वाले दिनों में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। इन सबके बीच पीएम मोदी के वैश्विक नेताओं से भी बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं, जिसमें मित्र देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पीएम मोदी को अपनी शुभकामना के संदेश भेज रहे हैं। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी और एनडीए को 2024 के चुनाव में लगातार तीसरी बार सफल होने पर बधाई। उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई चुनावी जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे राष्ट्रों को और हमारे लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इसके अलावा पड़ोसी देश भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबे ने कहा कि वो भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को बधाई। वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मैं हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को इच्छुक हूँ। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा कि एनडीए की जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारतीय लोगों के विश्वास को दिखाया है। सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। बता दें कि बीजेपी 240 सीटों पर जीती है, जबकि एनडीए को 292 सीटें मिली हैं। 2019 की तुलना में इस बार एनडीए करीब 61 सीटों का नुकसान झेल चुका है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे इस बार सामने आ रहे हैं, उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कहने को एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनती दिख रही है, लेकिन इस बार के नतीजे कमजोर बहुमत की ओर इशारा कर रहे हैं। जिस चुनाव में नारा 400 पार का दिया था, वहां पर इस समय 300 सीटों तक पहुंचने में भी पसीने छूट रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठाया। पार्टी की तरफ से लगातार राम के नाम पर हिंदू वोटरों को एक मुश्त करने का प्रयास दिखा। बड़ी बात यह थी कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी इसी साल जनवरी में हुआ। ऐसे में बीजेपी को पूरा विश्वास था कि उत्तर प्रदेश में तो आसानी से स्वीप कर जाएगी, उसे वहां से जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। इसी वजह से 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर दिया गया, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसने मोदी और योगी की चिंता को बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी ने बड़े स्तर पर यूपी में सेंधमारी की है। उन इलाकों में जीत के करीब पहुंच चुके हैं जहां पर पिछले चुनाव तक बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली हुई थी। राम मंदिर का मुद्दा वैसे तो पूरे देश के लिए अहम था, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से कुछ सीटों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था। अब फैजाबाद सीट तो केंद्र में ही थी, इसके अलावा गोंडा, केसरगंज, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती सीट पर भी राम मंदिर का काफी प्रभाव था। ये सारी सीटें फैजाबाद के आसपास ही पड़ती हैं। ऐसा माना जा रहा था यहाँ से बीजेपी को ज़्यादा चुनौती नहीं मिलेगी, लेकिन चुनावी नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। हैरानी की बात यह है कि फैजाबाद सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह ही पिछड़ रहे हैं। जिस अयोध्या को लगातार रामनगरी कहकर संबोधित किया गया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बीजेपी ने राम के नाम पर वोट मांगा, उसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने खेल कर दिया है। फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने इस बार पिछला कार्ड चलते हुए अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा था। अब चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि इस सीट पर अखिलेश की रणनीति रंग लाई। इस समय फैजाबाद में अवधेश प्रसाद 40,097 वोटों से आगे चल रहे हैं। वर्तमान सांसद बीजेपी के लल्लू सिंह काफी पिछड़ चुके हैं। दो बार से लगातार वो जीत दर्ज कर रहे थे, लेकिन इस बार जनता ने उनसे ज्यादा सपा प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। ये भरोसा भी तब जताया गया जब राम लहर सबसे ज्यादा हावी रही। इसी तरह सुल्तानपुर सीट भी फैजाबाद से ज्यादा दूर नहीं पड़ती है। यहाँ पर भी राम मंदिर का मुद्दा हावी था। इस सीट से बीजेपी ने मेनका गांधी को उतार रखा था। मानकर चला जा रहा था कि उनकी आसान जीत हो जाएगी, लेकिन यहाँ भी समाजवादी पार्टी के राम भुवल निषाद ने मेनका गांधी को बड़ा झटका दे दिया। अभी के नतीजे बता रहे हैं कि इस बार सुल्तानपुर सीट बीजेपी के हाथ से फिसल रही है। मेनका गांधी 34,000 के भी बड़े अंतर इस समय पिछड़ रही हैं। बीजेपी को इस बार अंबेडकर नगर सीट पर भी झटका लगा दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने 1,13,000 से भी ज़्यादा बढ़त बना ली है। इस समय बीजेपी के रितेश पांडे काफ़ी पिछड़ चुके हैं। ये सीट स्पा के खाते में जाती दिख रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बस्ती सीट की बात करें, तो यहाँ भी राम मंदिर का असर था। यहाँ की सियासत भी अयोध्या की राजनीति से प्रभावित रहती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ भी राम जी का आशीर्वाद बीजेपी को मिलता नहीं दिखा है। इस सीट पर सपा के रामप्रसाद चौधरी ने भारी बढ़त बना रखी है और बीजेपी के हरीश चंद्र काफी पीछे छूट चुके हैं। अब यूपी में बीजेपी का चुनावी शोर काफी कुछ बता रहा है। जो बीजेपी चाहती थी इस बार का चुनाव राम के नाम पर लड़ा जाए, किसी तरह से विपक्ष को राम विरोधी दिखाया जाए, ऐसा होता दिखा नहीं है। विपक्षी नेताओं का राम मंदिर कार्यक्रम में ना जाना एक बड़ा मुद्दा बना था। जानकर तक मान रहे थे कि राम से दूरी विपक्ष को वोटों से भी दूर कर देगी, लेकिन चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि अयोध्या और आसपास की सीटों पर भी स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे हैं। राम मंदिर बनने की खुशी है, लेकिन उसके नाम पर किसी को वोट दिया जाए ऐसा होता नहीं दिखा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।